Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो पंडितों ने उसको कहा कि ये कहते हैं कि तेरे को थप्पड़ मारूंगी, मारूंगी चाटा, कह रही है ये। तो उसने कहा कि तू थप्पड़ मारेगी, हम मुक्का मारेंगे। उसने मुक्का दिखा दिया। हाँ, ये सच्ची घटना है कालिदास जी के साथ। मुक्का दिखा दिया। विद्युत तमा ने पूछा कि क्या कह रहा है ये। बोले हैं तो पांच महाभूत, लेकिन ये पांचों महाभूत पंचीकरण से पांच महाभूत एक आपस में मिलकर ही तब सृष्टि संभव है। पांचों भूत अलग अलग हो जाए तो सृष्टि संभव नहीं। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचयिता ये अधम शरीरा। देख लो, पांचों महाभूत मिलकर तो ये शरीर है ना। वो ये कह रहा है दोनों सब मिलकर हो रहा है। है तो सही विद्वान, ठीक कह रहा है, बात ठीक कह रहा है। अब क्या आगे क्या शास्त्रार्थ करना है तो विद्वान, चलो अब शादी कर लेते हैं और क्या हर जाए। क्यों बड़ा लंबा चौड़ा करना है, ये कम नहीं है। विद्वतामा ने कहा गूंगा है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन है विद्वान, विद्वान होने के कारण विद्वान से मैं शादी करूंगी। दोनों की शादी हो गई। लेकिन जब घर चली गई विद्वत्तमा तो महापट्ट मूर्ख, क्या उसको पता था? वो तो प्रायोजित विद्वान था ना, वो समझिए कि नहीं, प्रायोजित विद्वान था। तो उसको बड़ा पश्चाताप होगा, अरे ये दुष्टों ने मुझे षड्यंत्र पूर्वक मुझे फंसाया। कोई बात नहीं, संसार में असंभव कुछ नहीं है। तब विद्वत्तमा ने कालिदास को कालिदास बनाया, कहा कि तुरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको भगवती का मंत्र देती हूं। सतत ये मंत्र भगवती सरस्वती महाकाली के मंदिर में बैठकर ये मंत्र जप कर। विद्याधिष्ठाती देवी काली का ये मंत्र है, तू ये जप, खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगी, तुझे और कोई चिंता न कर, मैं तेरे को विद्वान बनाकर ही छोड़ूंगी। उसने सतत अनुष्ठान में लगा दिया और रात दिन बस कालिदास उसी मंत्र के जप में लग गए। भगवती काली के मंत्र यानी विद्याधिष्ठात्री देवी का मंत्र जपने लग गए। तो जपते जपते एक दिन भगवती काली, क्योंकि वो तो मूर्ख था, मूर्ख होने के कारण उसके दिमाग में प्रपंच तो घुसता नहीं था। दिमाग में प्रवचन कचरा तो विद्वान होने के बाद आता है, समझे कि नहीं। जितना पढ़ा लिखा उतने दिमाग में कचरा आएगा, और जितना दिमाग में कचरा आए उतने अशांति होगी। प्रपंच ये ये ये, अब वो तो बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, दाल रोटी की चिंता होती थी, वो भी उसने विद्युत्तमा ने समाधान कर दिया था। और दिमाग इधर उधर जाने की तो बात ही थी नहीं, लगा रहा। तो 6 महीने में साक्षात भगवती काली प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया, और तो विद्वान हो गया। होता है ऐसा विद्वान हो गया, आए फर संस्कृत बोलने लग गया, क्या विद्वान। तब जब घर लौटा तो उसकी पत्नी तो अंदर रसोई बना रही थी, विद्वत्तमा दरवाजा बंद करके आके दरवाजा में खटखटाया दरवाजा को। तब उसने कहा कौन है? बोले मैं तुम्हारा पति कालिदास। तुम आज जल्दी क्यों आ गए? वो तो विद्वान थी, संस्कृत में पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, कोई विशेष बात कहने के लिए है और तुम इतनी जल्दी आ गए? अस्ति कश्चित वाग विशेष। उसने कहा कि हां खोलो। तो 3 वाक्य प्रयोग किया, 3 पद प्रयोग किया विद्युत्तमा ने प्रश्न के रूप में, अस्ति कश्चित वाग विशेष। कालिदास ने खड़े खड़े ही 3 काव्य लिख दिया, काव्य की रचना कर दी। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराजा। ले जी मेघदूत लिख दिया, मेघदूत महाकाव्य अस्ति इस पद प्रश्न के उत्तर में है। और कश्चित दूसरे पद से कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारा प्रमत्ता कुमार संभव लिख दिया। भाग विशेष भागर्था विव संप्रक्तो भागर्था प्रतिपक्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो रघुवंश महाकाव्य लिख दिया। तीन पद उसने प्रश्न के रूप में पूछा मिद्योत्तमा ने, और उसका तीन महाकाव्य लिख दिया। और कालिदास उस दिन से कालिदास हो गए, नहीं तो मूर्खावाधिराज थे वो, पट्ट मूर्ख थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, कोई बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख हो और उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता का काम करता है, जैसे मिद्योत्तमा और कालिदास के बीच के संवाद को पंडित लोग कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे। मान लो इसी तरह कोई गरीब, कोई गरीब नहीं, कोई मूर्ख बिल्कुल पट्ट मूर्ख कालिदास जैसा, वो भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहा हो और वो अपने हृदय की बात शिव के सामने रख रहा हो, लेकिन उसके सामने शब्द नहीं है, तब शंकराचार्य जी ने उसकी भावना को परिचित होकर जानकर उसके तरफ से शिव जी के सामने उसकी भावनाओं को इन शब्दों से व्यक्त किया। सुनोगे तब ये प्रसंग आपके सामने समझ में आएगा क्या भाव व्यक्त किया शंकराचार्य जी ने, नहीं तो तुम लोग फिर शंकराचार्य जी की आलोचना करने लग जाओगे ये भूमिका जब तक नहीं सुनोगे, इसलिए मैं ये भूमिका बना रहा हूं। सदा मोहाटभ्याम चरति कुयवती नाम कुच गिरौ नटत्या शाखा नटत्या शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभित कपालिन भिक्षो मे हृदय कपि अत्यंत चपलम। यहां से शुरू करो, हाँ कपालीन भिक्षु ये संबोधन है, हे कपालीन, कपाल माने खोपड़ी है ना मनुष्यों के, निरकरोटी परिकरा मैंने स्तोत्र में उसके लिए क्या आया निरकरोटी, भिक्षा पात्र के लिए एक किसी मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी सफेद वो खोपड़ी लेकर चलते, उनके पास पात्र के नाम में एक मनुष्य की खोपड़ी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, उसी को यहां कपालीन कपाल ये वो धारण करने वाला होने के कारण शिव का नाम क्या हुआ कपाली, हे कपाली संबोधन कपालीन। भिक्षो हो संगति हो गया क्योंकि हाथ में खप्पर है कपाल है तो किस लिए, तो भिक्षा मांगने के लिए, हे भिक्षो हो शिवजी से बढ़कर बड़ा दूसरा यह भिक्षु नहीं है भिखारी नहीं है। आप कहते हो ना कि बंबई में भिखारी है ना, मंदिरों के बाहर भिखारी बैठते हैं, बाबुलनाथ के मंदिर के बाहर भिखारी बैठते हैं कि नहीं, जाते हो सुबह दर्शन करने सोमवार को कितने लाइन है बैठते हैं, और आप लोग सबको कुछ न कुछ देते हो, किसको देते हो तो बोले भिखारियों को कहते ही हो, शब्द प्रयोग करते हो, क्योंकि उन सब भिखारियों के भी परम श्रेष्ठ भिखारी है अध्यक्ष, भिखारियों का अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, कौन है उन भिखारियों का प्रेसिडेंट कौन है बाबुलनाथ उन भिखारियों का प्रेसिडेंट तो बाबुलनाथ है ना, है कि नहीं बोलो है अध्यक्ष प्रेसिडेंट कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन सोनिया गांधी, बीजेपी का प्रेसिडेंट गडकरी, यही तो है। इसी तरह जहां अध्यक्ष प्रेसिडेंट है वहीं उनके जो अनुयायी तो आएंगे ना, फिर तो सबसे बड़ा भिखारी तो वही है, बाबुलनाथ बैठा है वहां। इसलिए हे भिक्षु हो, क्या भीख मांगते हैं, गजब है उनका भीख मांगना। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्न करी निर्दूता खिल घोर पावन करी काशीपुराधीश्वरी प्रालेया चल वंश घोर पावन करी। हाँ? काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपा बलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। लेव जी, भिखारी भी पति और भिक्षा देने वाली पत्नी, घर में ही सेठ और घर में ही भिखारी, घर में सेठानी और घर में भिखारी। लेव जी, घर वाला कैसा भिखारी और घर वाली कैसी सेठानी। घर वाली सेठानी और घर वाला, क्या जोड़ी मिली है शिव पार्वती के। और तुम लोग क्या करते हो जब भूख लगती है, पत्नी को क्या करते हो, ए मुझे भूख लग रही है जल्दी खाना दे, और वो कदाचित कहे कि अभी तैयार नहीं है, तो तुम्हारा क्रोध ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। लगता है कि नहीं, बोलो ईमानदारी से। लेकिन भगवान शिव क्या करते पता है, नित्यानंद करी, मांगने का ढंग होता है वो। नित्यानंद करी बरा भय करी, हे अन्नपूर्णा तुम अपने पास कुछ न कुछ हमेशा रखती हो, जब भी भूख लगती है मैं मांगता हूं तो तुम कुछ न कुछ देती हो, और तुझसे मुझे तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। तुम्हारे पास आकर मुझे कभी भी भूख से मरना नहीं पड़ता, दुख नहीं होता। नित्यानंद करी बड़ा अभय करी है, तुम्हारे आश्रय में रहने वालों को वरदान और भिक्षा और अभय दान सब देती हो। त्रैलोक्य सारे हरे, देख लो, नित्यानंद करी बरा भय करी। हाँ, प्राले अचल वंश घोर पावन करी, अचल वंश पावन करी। अचल वंश कौन है, पर्वत का, पर्वत अचल है, उनकी पुत्री पार्वती हिमालय की पुत्री, अचल की पुत्री, अचल वंश, जिस वंश में आपने जन्म लिया उस वंश को ही आपने पवित्र कर लिया। भगवती कौन बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं। ऐसे मक्खन लगाओ तब बढ़िया खाना मिलेगा टोपी वालों। काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देही कृपा। एक महात्मा था बेचारा, संस्कृत तो पढ़ा नहीं था लेकिन श्लोक याद कर लिया था उसने, विलंब न करी करता था, आलंबन करी, भिक्षाम देही कृपा आलंबन करी, कृपा का आलंबन, कृपा का आश्रय, करुणा का आश्रय, मेरे प्रति दया करके कृपा करके भिक्षाम देही कृपा अवलंबन करी। तो कृपा अवलंबन करी, अवलंबन माने आश्रय, तो उच्चारण तो कर पाता नहीं था, कृपा अवलंबन करी। कृपा विलंब न करी बोलता था वो, माने जल्दी दो। ठीक ही कह रहा है, चल भूख से छटपटा रहा होगा। माता अन्नपूर्णेश्वरी, जब भगवान शिव खड़े होते हैं इस तरह से प्रार्थना करते हैं भगवती अन्नपूर्णा को, पार्वती को, तो वह तुरंत उनके भिक्षा पात्र में वो भिक्षा देती है। और भगवान शिव तो तीनों लोक, बाणासुर को तीन लोक का साम्राज्य देने वाले को भोजन के लिए पात्र क्या रखा, तो निर्करोटी कपाली, चांदी के थाल और सोने का थाल नहीं बना सकते थे भगवान शिव, भोजन करने का पात्र नहीं बना सकते थे है? क्या कमी थी बोलो? उनकी एक कृपा दृष्टि वाले चांदी के थाल में खाना खाते हैं और वो मरे हुए मुर्दों की खोपड़ी में, तो भगवान भी जानते हैं यदि मैं चांदी का बनाऊंगा तो मुझे भी उन्हीं लोगों की तरह टेंशन होगा। एक खोपड़ी का लिया तो कहीं पड़ा है तो गया था, खो गया तो खो गया, दूसरा का उठा लिया, खो गया हो तो दूसरा उठा लिया, बस और क्या, क्या बढ़िया, रक्षा करने की चिंता ही नहीं है। नहीं तो भोजन से ज्यादा वो चांदी के और उसके सोने के थाल की चिंता करनी पड़ेगी है? इस तरह जब प्रार्थना करते हैं भगवान शिव तो मां तुरंत देती है। तो इसका नाम क्या हुआ शिव जी का? भिक्षु हो, सदा भिक्षा टव्यम, हमेशा भिक्षा से। और दूसरी बात है कि भिक्षा का अन्न बड़ा शुद्ध होता है, भिक्षा का अन्न शुद्ध पवित्र होता है, उसमें किसी की वासना नहीं रहती है, शुद्ध अन्न होता है। इसलिए संत भिक्षा अन्न खाकर, भिक्षान्न मात्रे रजतुष्टिमंत, इसीलिए संतों को शंकराचार्य जी ने कहा कि वही संत भाग्यशाली है, वही संत भाग्यशाली है, संसार में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो बंबई में मलबार हिल में फ्लैट की बात नहीं, किसी जंगल में पेड़ के नीचे सोने की अवस्था नौबत आ जाए वो भाग्यशाली है। मूलम तरोर केवलम आश्रयंता, बस जीवन में वो अवस्था आ जाए जब सब कुछ खत्म हो जाए और तुम्हारी नौबत पेड़ के नीचे सोकर रात्रि बिताने की अवस्था में तुम आ जाओ, समझ लो कि तुम्हारी भाग्य खुल गया। मूलम तरोर केवलम आश्रयंता, भिक्षान्न मात्रे न चतुष्टिमंता, और खाने के लिए माग माग कर खाने की अवस्था आ जाए। अभी तो तुम लोग बहुत समृद्ध हो, तुम्हारा भाग्य अभी खुला नहीं है, हैं? क्योंकि अपने घर की रसोई खा रहे हो ना, अभी माग के खाने की नौबत आई है तुम्हें, इसलिए तुम भाग्यशाली नहीं हो। उस दिन तुम भाग्यशाली हो जाओगे जिस दिन माग के खाने की अवस्था आ जाए। मूलम तरोर केवलम आश्रयंता, भिक्षान्न मात्रे न चतुष्टिमंता कौपीनवंता। अभी तो तुम्हारे अलमारी में 365 दिन के लिए 365 जोड़े कपड़े हैं, तुम भाग्यशाली नहीं हो। तुम उस दिन भाग्यशाली होंगे जिस दिन तुम्हारे अंग रक्षा के लिए केवल एक लंगोटी के अलावा और कुछ न हो। कौपीनवंता खलु भाग्यवंत, संसार में वही भाग्यशाली है भाई, हा जिसकी ये चार अवस्था सामने उपस्थित हो जाए। मूलम तरोर केवलम आश्रयंत, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, अशोकवंत और करुणैकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। तो भगवान शिव वो भाग्यशालियों में से है जो शंकराचार्य जी ने परिभाषा कर दी है, हैं? उनके पास भी तो यही है, मूलम तरोर केवलम आश्रयंत, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत, अशोकवंत करुणैकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। हे भिक्षु हो, संबोधन है शिवजी के लिए, संबोधन हे भिक्षु, कपालीन जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है, सदा मोहाटव्यम, मेरे पास मुझे हैरान करने वाला एक बंदर है। आप लोगों को बंदर हैरान करता है कि नहीं? यहां तो बंदर है ही नहीं, वृंदावन गए हो तो पता चलता है ना, मथुरा वृंदावन, अब कभी अवसर लगे तो नेपाल भी आना, मेरा आश्रम है ना देवघाट में, आ फिर बंदर की, बंदरों के देखना क्या उनके नाटक है। क्या परेशान करते हैं। ओहो, वर्णन किया शंकराचार्य जी ने, वो बंदर क्या क्या कर रहा है ना। हे कपालीन, हे भिक्षु, मैं हृदय कपि, मेरा मन रूपी बांदर। कपि का अर्थ तो सुना है ना, बांदर। कपीसा हनुमान को क्या कहा, कपियों का राजा, बांदरों के राजा, बंदरों के राजा कपीसा। हृदय कपि, यहां हृदय शब्द का अर्थ मन, मनक कपि, मन रूपी कपि बंदर। अत्यंत चपलम, मेरे पास एक मन रूपी बंदर है, इतना चंचल है, इतना चंचल है, हैरान करता, हैरान करता है। क्या हैरान करता है तुमको? सदा मोहाटव्याम चरती, हमेशा मोह रूपी घोर जंगल में भटकता ही रहता है। विषय आसक्ति रूपी मोह रूपी जंगल में मेरा मन भटकता ही रहता है। ये मन रूपी कपि भटकता रहता है। और क्या करता है तुम्हारा ये मन रूपी बंदर? बोले हैरान करता है, कहां कहां नहीं पहुंचता, शांति से बैठते ही नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी में जाता है, चढ़ जाता है पहाड़ की चोटी में, पहुंच जाता है। और ये पहाड़ कहां का है भाई? शंकराचार्य जी ने कह दिया, मैं भी कह देता हूं भाई, उनको संकोच नहीं है तो मुझे किस बात का संकोच है? उस पहाड़ क्या है? युवती नाम कुछ गिरऊ, देख लो, ये अज्ञानी के मन की स्थिति का अनुवाद कर रहे हैं शंकराचार्य जी, ध्यान रखना, इसको अन्यथा नहीं लेना। उनके मन की यह अवस्था ना हो, लेकिन मान लो एक साधारण प्राकृत पामर जीवों की अवस्था तो यह है कि नहीं? और पामर जीव नहीं, मुमुक्षु साधकों की यह अवस्था है। पामर जीव की तो बातें ही छोड़ दो, जो नित्य भगवान के भजन करना चाहता है, साधना करना चाहता है, उसके मन की अवस्था है, उसका अनुवाद कर रहे हैं शंकराचार्य जी। हाँ, युवती नाम कुछ गिरो, तुरंत अब पहुंच जाता है। एक दो है ना, तो दो स्तन है, तो दोनों को उन्होंने उपमित किया, किसके साथ? पहाड़ के साथ। उभार है ना, हृदय का उभार है, वो पहाड़ की चोटी का उपमा दिया। मन जब भी उछल के पहुंच जाता है पहाड़ की चोटी पर, वहीं घूमता रहता है। विषयाशक्ति इस तरह होती है, इसको अन्यथा नहीं लेना। हाँ, लेकिन यहां तक की अवस्था मन के अनुवाद कर रहे हैं, साधकों की भाव व्यक्त कर रहे हैं, आपकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सदा मोहाटव्यम, एक तो मन हमेशा जंगल में भटकता है, और कभी कहीं जंगल से निकला तो फिर पहाड़ों में उछलने लग जाता है। नटत्यासा शाखा, और पूरे शरीर को एक वृक्ष कहा, और पूरे संसार को वृक्ष कहा। गीता में पूरे संसार को एक वृक्ष कहा है ना, ऊर्ध्वमूल मद शाखा। एकायनो असौ दुफल त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा शब्दत्वगष्ट विटप नवाक्ष दशच्छदि द्वि खग यादि वृक्ष, एकादश स्कंद भागवत में पूरे संसार को एक वृक्ष के रूप में लिया है, पेड़ के रूप में लिया है। और पूरा संसार एक वृक्ष है तो उसकी शाखा क्या है? जहां बंदर एक शाखा से दूसरे शाखा में उछलता है, कूदता है, जंप मारता है, वो शाखा का नाम क्या है? आशा शाखा। आशा, एक आशा पूरी नहीं हुई कि दूसरी आशा, दूसरी आशा पूरी नहीं हुई कि तीसरी आशा, तीसरी आशा पूरी नहीं हुई कि चौथी आशा। एक व्यक्ति था, पहले कई वर्ष पहले पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था, उसका प्रयोजन था लोगों के पास जो काला धन जमा है उसको बाहर लाना, व्हाइट बनाना, यानी ओपन करके पब्लिक में ले आना। वो उद्देश्य से वो स्कीम ले आया था, आप लोगों को मालूम होगा, इंदिरा विकास पत्र है ना, सुना कि नहीं सुना पता नहीं, वो स्कीम लाया था 5 साल में दुगना ठीक 5 साल में दुगना वो स्कीम लेके आया था, तो बहुत प्रचार हुआ। तो एक व्यक्ति भक्ता हमसे भी आके कहने लगा, महाराज ये अच्छा स्कीम है, 5 साल में रकम दुगना, आपके पास कुछ हो तो एक खरीद लो सर्टिफिकेट। लेकिन वो फिर चेक से नहीं देते थे, पोस्ट ऑफिस देना पड़ता था कैश से। उसका मतलब चेक से लेने का नहीं था, कैश से लेने का मतलब ब्लैक मनी घर से निकले, कहां से लाओ, क्या हो, कितना, ये उसको पूछ नहीं करता था। आप उसको कैश दे दो, वो आपको सर्टिफिकेट देगा और 5 साल में दुगना रकम। तो हमसे एक व्यक्ति आकर कहने लगा कि महाराज ये अच्छा स्कीम है, 5 साल दुगना होता है, लगा लीजिए। तो हमने कहा देखा कुछ पैसा हो तो भक्तों ने, पहले तो मठाधीश था नहीं, बम्बई में कथाकार था, मंडलेश्वर भी नहीं था, कमंडलेश्वर था, पहले तो मंडलेश्वर भी नहीं था, कमंडलेश्वर था, हाथ में कमंडलो लिया चला, न मठाधीश न पीठाधीश है। तो जो कुछ दक्षिणा दिए थे वो सब कलेक्शन था, तो देखा 7-8 हजार कितना था, वो लगा दिया। अब तो उसके बाद दिमाग में 5 साल में ये दुगना होगा फिर 5 साल के लिए उसको 14 हो गया ना 5 साल के बाद, तो वाह। फिर 5 साल के बाद क्या करेगा, बोले फिर रख दूंगा तो 28 हो जाएगा, वाह क्या बात है। आशा पास दौड़ रहा है बंदर, आशा शाखा, ये करूंगा तो ये करूंगा तो ये। शेख चिल्ली सुना है कि नहीं आप लोगों ने, शेख चिल्ली की कहानी पंचतंत्र में है। दूध बेचने गया, मिट्टी का घड़े में सिर में दूध लेकर बेचने गया, सोचने लगा ये दूध बेचूंगा, कुछ पैसा जमा करूंगा, थोड़े दिन के बाद थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे, एक दूसरी गाय खरीदूंगा, उसका भी दूध बेचूंगा रखूंगा, और इतने करते करते कुछ गाय ज्यादा होंगे, फिर एक जमीन खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक गाड़ी खरीदूंगा, शादी करूंगा, शादी के बाद पत्नी साथ में होगी, एक बच्चा होगा, उसको गोद में खिलाऊंगा, क्या आनंद आएगा। कल्पना करते हुए जा रहा था, बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे को गोद में लिया था, तब तक वो बूढ़ा हुआ, दाढ़ी दड़ा लंबी हो गई थी, उस बच्चे ने दोनों हाथ से अपने बाप की दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू किया, तो ऐसा दर्द हुआ कि अरे बेटा तुम्हारे पापा को दर्द हो रहा है, हाथ छुड़ाओ, छुड़ा नहीं रहा था, दोनों हाथ छोड़ दिया, और दाढ़ी से वो बच्चे के हाथ निकालने के लिए घड़ा तो गिर गया और फूट गया दूध। ये शेख चिल्ली की कहानी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आशा शाखा अटती। ये मन बंदर या तो जंगल में भटकता है, या पहाड़ों में उछलता है, या फिर आशा शाखा सु अटती, एक शाखा से दूसरे शाखा, कौन सी शाखा, आशा अभिलाषा, सदा मोहटव्याम चरती वती नाम कुछ गिरो नटत्या शाखा शाखा स्वटिति। ऐसा नहीं कि एक शाखा में जाए और वहां थोड़ा बैठ जाए शांति से, नहीं, फिर उस शाखा से फिर दूसरा, और झटिति झटिति स्वटति झटिति, शाखासु अटति, अटति माने भटकना, अटती का अर्थ होता है अटकना नहीं है, अटती माने भटकना, तीर्थाटन अटन, क्या करते हो शब्द प्रयोग करते हो कि नहीं, तीर्थाटन देशाटन का अर्थ क्या हुआ, देश में अटकना थोड़ी है, भटकना। तो ये मन कपी जो है एक शाखा से दूसरी शाखा आशारूपी शाखा में भटकता ही रहता है, कैसे, स्वटिति झटिति, जल्दी जल्दी उछलता ही रहता है, स्वैरम अभितः अपनी मर्जी से, स्वैर शब्द का अर्थ होता है अपनी मर्जी से, किसी की कहना नहीं मानता, अपनी मर्जी से। इसीलिए अपनी इच्छा से घूमने वालों को है? कोई स्त्री यदि मनोमर्जी स्वच्छंद घूमने लगती है तो उसको निंदा अर्थ में वाक्य प्रयोग करता है स्वैरिणी। स्वैरिणी का मतलब वह किसी के अनुशासन में ना रहकर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से हाँ जिधर वो उधर घूमती रहती है, उसको स्वैरिणी निंदा अर्थ में बोलते हैं। इसी तरह अटति स्वैरम अपनी मर्जी से भटकता रहता है, अभीता चारों तरफ, पूछता भी नहीं, मुझ मालिक हूं मेरे से पूछता ही नहीं है, अपनी मर्जी से भटकता रहता। मैं फलाने जगह जाऊं कि ना जाऊं पूछता तो मैं उसको बोलता नहीं कि भाई वहां मत जा, समझाता, मुझे पूछता ही नहीं है, मुझे पूछे भी ना मुझे मालूम ही नहीं देता और उछल के चला जाता है स्वैरिणी। हे कपालिनी, हे भिक्षु, मैं हृदय कपी कपिम अत्यंत चपलम, ऐसे अति चंचल मेरे जो मन रूपी बंदर है उसको मैं तो पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं तो नहीं पकड़ पा रहा हूं, मैं हैरान हो गया। दृढ़म भक्तिया बद्धा, मैं आपको एक रस्सी देता हूं, रस्सी मेरे पास है लेकिन मैं उसको बांधने में समर्थ नहीं हूं, रस्सी मैं देता हूं बांध, पकड़ के बांधना आपका काम है।